نعم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات. کسی صاحب نے ایک شعر کا ایک مصرع ہی لکھا ہے کہ میسر ان کی رحمت ہو تو پھر کھوٹا کھرا کیا ہے. اس کے بعد سوال لکھا ہوا ہے کہ ایک عام انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر توجہ اور نظر کرم میسر ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو کسی طرف سے بھی توجہ اور نظر عنایت حاصل ہو رہی ہو تو انسان میں تبدیلیوں کا آنا لازمی امر ہے. اور اس میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہوتی ہیں اس اسلوب سے جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ صاحب جو آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں یا تو جو آپ پہ ڈالتے ہیں یا آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ اس چیز کی دلالت ہوتی ہیں کہ اس بندے پر توجہ کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کی ٹریننگ کہاں سے ہو رہی ہے. تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے وہ یہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کسی کو حاصل ہو جائے, نظر عنایت ہو رہی ہو, تو اس شخص کے تمام تر رویے زندگی کی طرف تبدیل ہونے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سارے کے سارے ہی اخلاق حمیدہ تھے, اس میں شک نہیں کوئی, لیکن ان میں بھی باوجود اس کے کہ وہ سب بہترین اخلاق تھے ان میں بھی کچھ چیزیں بڑی نمایاں تھیں, جیسے اف اور درگزر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معافی اور درگزر بہت تھی, کسی کو کچھ کہا ہی نہیں کبھی. تو جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ یا باری تعالیٰ ان پہ کوئی عذاب نازل نہ کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ان کی نسل سے کوئی آدمی راہ راست پر آ جائے. تو معافی کا مقام, تو معافی کا حال یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, سخاوت بے پناہ تھی. جیسے یہاں کئی بار بات ہوئی کہ فقر میں سخاوت کی تعریف, سخی کون ہے, تو فقیر کے یہاں تو سخی وہ ہے جب وہ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہو तो उसे बहुत भी थोड़ा लगे, उसका हाथ रुकने न पाए देने से कि नहीं शायद अभी कम दिया मैंने, और दे दूं और दे दूं और दे दूं, तो बहुत भी थोड़ा लगे देते वक्त। और जब कोई शख्स उसे कोई चीज दे तो उसे थोड़ा भी बहुत लगे, वो सखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां नुमाया चीज उफ और दरगुजर सखावत। तो जब किसी पर तवज्जो होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो एक तो उसके अंदर एक तब्दीली आएगी कि गुनाहों के बारे में उसमें रेजिस्टेंस बहुत पैदा हो जाएगी, कि जमीर उसका बड़ा उसे रोकेगा गुनाह से, उधर को जाने नहीं देगा। और अगर किसी इंसानी मजबूरी के तहत कोई गुनाह सरजद हो ही गया तो उसका जमीर उसे लानतान बहुत करता है, ये तो पहली बात आती है। फिर उसके जिंदगी में रवैये जो है उसमें बहुत तब्दीली आ जाती है, और वो तब्दीली इसी तरह से जैसे मैंने अर्ज किया आपसे मिसाल के तौर पे, खुश नसीब है वो शख्स जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो जो हासिल भी जाए, तो उसकी तो दीन और दुनिया दोनों ही संवर गई। फिर दूसरा सवाल है कि अल्लाह जिसे चाहता है चुनकर अपने लिए खास कर लेता है, रब ताला का तो मामला ऐसा है कि वो मालिक कुल है, जो चाहता है करता है, उसे कोई पूछने वाला उसे कौन पूछ सकता है, मालिक है वो। तो ऐसे बहुत से वाकयात आपको मिल जाएंगे, ये बड़े बड़े मशहूर अपने जमाने के चोर और डाकू बहुत ही जय्यद और नामवर वली गुजरे, फिर ये रब ताला की रहमत हो गई। और कोई बात ऐसी दिल पर असर कर गई कि उनका कल्ब पलट गया, रब तो जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे, जब चाहे हिदायत दे दे। एक वाकया जिंदगी में मैंने भी देखा है, एक साहब राहजन थे वो, और गालबन इसी सिलसिले में राजधानी के सिलसिले में उनके हाथ से कुछ लोग जान से भी गए होंगे। तो वो बड़े शाह साहब के पास आ गए, क्योंकि ये ऐसे लोग बुजुर्गों की इज्जत बहुत करते हैं। तो बड़े शाह साहब ने उनको मना किया कि जो कुछ करते हो ये ना किया करो, लेकिन मेरे ख्याल असर नहीं हुआ शायद उन पे, तो फिर गायब हो गए आके। कई माह के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की अपोजिट अजायब घर के सामने फुटपाथ पर वो साहब मिल गए शाह साहब को, तो शाह साहब ने उनको कान कि निचले हिस्से से लौ से कान की लौ से उन्हें पकड़ा, और पकड़ के जहां बैठते थे वहां ले आए। उसके बाद उन्होंने हर चीज छोड़ दी। तो रब ताला जिसे चाहे यूं हिदायत दे दे, ये तो एक चीज है कि रब जिसे चाहे हिदायत दे दे, लेकिन इंसान को हिदायत के लिए खुद भी जस्तजू और जद्दोजहद करते रहना चाहिए। मैं किस्सा देख रहा सुन रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे फरमाया, मिलने गए हुए थे तो फरमाया कि आज जाके ऐलान कर दो कि जो शख्स भी जिंदगी में एक बार कलमाए शहादत पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा। तो हुक्म था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जनाब हजरत अबू हुरैरा मदीने की गलियों में बड़ी बुलंद आवाज में ऐलान करते हुए जा रहे थे कि जो कोई जो मुसलमान एक बार कलमा शहादत पढ़ लेगा वो जन्नत में जाएगा। तो सामने से जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, लोगों को बेअमली की तरफ बुला रहे हो कि लोग तो फिर नेक अहमाल करने की बजाय सिर्फ कलमा शहादत एक बार पढ़ लेंगे और ये कहेंगे कि अब हम जन्नत में चले जाएंगे। तो थोड़ी सख्ती शुरू कर दी इन पे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कर रहा हूं। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा सकते। चलिए पूछ लेते हैं। तो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो जाके जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा ये हरकत कर रहे थे मदीने की गली में और ये कह रहे हैं कि आपके हुक्म पर कर रहे थे। फरमाया कि हाँ, इसे मैंने ही कहा था। तो जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो मुसलमान अमल की राह छोड़कर सिर्फ इधर को चले जाएंगे तो ये नुकसान होगा। तो आपने फरमाया कहा तुम सच कहते हो। तो जनाब अबू हुरैरा को रोक दिया। तो बात यह है कि मुसलमान की जिंदगी में तो जद्दोजहद और अमल बहुत बुनियादी हैसियत रखता है और रब ताला भी उन लोगों को पसंद करता है जो हर वक्त मुजाहिदों की तरह अमल के लिए कमर कस के रखते हैं, तो अमल पर जोर देते हैं, अल्लाह उनको पसंद करता है। बेअमली रब को पसंद नहीं, सुस्त लोगों को रब ताला पसंद नहीं करता है। हिदायत तो यकीनन रब देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें अपने तौर पे कोशिश करते रहना चाहिए कि हम हिदायत की राह पालें। और हिदायत की राह मेरे नजदीक में कुरान और सुन्नत ही और सहाबा कराम की पैरवी है। इनका अगला सवाल ये है कि सिलसिला साबरिया किस लिहाज से दीगर सलासल से मुनफरद और मुख्तलिफ है। बात यह है कि सिलसिला कोई भी हो, चाहे अफ्रीका का सिलसिला शाज़लिया हो या इंडो पाकिस्तान के सिलसिलों में से कोई एक सिलसिला हो, سارے سلسلے اصل میں انسان کی تربیت اور اس کی ہدایت کے لیے ہی ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار لے، شریعت پر عمل کر لے. فرق یہ پڑا ہے کہ انڈیا میں جب یہ تصوف آیا تو یہاں چونکہ ہندو کلچر کا غلبہ ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ آج بھی ہے، تو تصوف جو خالصتاً ایک طرح سے ٹریننگ پروگرام تھا شریعت پر عمل کرنے کا، اس میں بڑے پیمانے پر کنٹامینیشن ہو گئی اور تصوف میں سادوئزم در آیا ہے. جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ راہ ہدایت صرف وہ ہے جو قرآن سنت یا قرآن حدیث سنت اور صحابہ کرام کے اتباع میں ہے. اسی طرح ہر وہ بات جو قرآن حدیث اور سنت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ ہوتی ہو وہ باطل ہے، یا پھر سب مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہو، متفق ہو گئے ہوں، تو باقی سب باطل ہے، اس کو فالو نہیں کیا جانا چاہیے. اسلام کے اندر ترک دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بھرپور دنیاوی زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے سب نے بڑے بھرپور زندگی گزاری ہے دنیاوی. اپنے فرائض سے منہ موڑ کے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ویرانے کی راہ لے لینا، وہ اسلام میں قابل ستائش نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اپنے فرائض کے سلسلے میں رب کو بھی جواب دے ہیں، ہم سے جواب طلب کر لیا جائے گا کہ ہم پر ہمارے ماں باپ کے حقوق تھے، ہماری امیڈیٹ فیملی کے حقوق تھے، رشتہ داروں کے حقوق تھے، دوستوں کے، نیبرز کے، تو وہ حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے، اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، اس کا جواب دینا ہوگا ہمیں. نوافل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا، تو یہ جو ہمارے یہاں کنٹیمینیشن پیدا ہوئی تصوف میں اور پھر مختلف قسم کی ریاستیں، مجاہدے، چلے، یہ اس میں کنٹیمینیشن ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ میرے ساتھ ایک صاحب بڑے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو بڑے شاہ صاحب نے یہ دیکھ کے کہ وہ میرے دوست ہیں تو بھنا ہوا گوشت پکایا وہیں پہ تازہ، اور روٹیاں گرم منگوا کے ان کے سامنے رکھیں کہ کھائیے. وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا جس کو میں یہ سمجھا پہلے تو کہ یہ شاید اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ ہم یہ عام طور پر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فقیر خود مرچوں سے روٹی کھا لیتے ہیں اور مہمانوں کو بھنا گوشت کھلاتے ہیں. یہ سوال بظاہر بڑا انوسنٹ کوسچن تھا، मैं तो उससे मेरा तासुर यही था कि इन्होंने अपने इल्म में इजाफे के लिए सवाल पूछा, लेकिन उसका जो जवाब शाह साहब ने दिया तो एकदम से मैं चौंका कि वो तो उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल यकीनन ऐसा होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मेरा रब मुझे नेमतें अता फरमाता है तो मैं उनसे मुंह मोड़ कर कुफरान नेमत क्यों करूं, ना शुक्रा क्यों कहलाऊं। तो रब मुझे भुना गोश्त खिलाता है तो मैं तो मिर्चों से रोटी खाने को तैयार नहीं हूं कि ना शुक्रगुजारी हो जाएगी। तो रब ताला जो नेमतें अता फरमाता है उनसे मुंह मोड़ना वो ना शुक्रगुजारी में आ जाएगा। अगर रब ताला ने मुझ पे इनायात की हैं और मुझे रिस्क खुला अता फरमाया है तो वो मेरे अहवाल से जाहिर होना चाहिए। तो तसव्वुफ में ये इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं वो सब साधुइज्म से ही ली गई हैं, वो कंटेमिनेशन है। तसव्वुफ की असली शक्ल ये नहीं है। तसव्वुफ की जो असली शक्ल है वो तो ये है कि इंसान अपने नफ्स से लड़ना सीखता है, इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रद्द करके अल्लाह के तयशुदा पैमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। यार्ड स्टिक जो अल्लाह ने दी है हमें वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ये ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग का नाम तसव्वुफ कह लीजिए आप। तो जितने भी सिलसिले थे ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में लेके जाते थे इंसान को कि वो शरीयत पर अमल करना शुरू कर दे। ट्रेनिंग का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें तमाम सलासल की तो हम ये देखेंगे कि उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एक ही हैं सबके, कि इंसान की जिंदगी सुन्नत के ऐन मुताबिक हो जाए। अब यहां एक खतरा और पैदा हो जाता है कि जब हम कुरान हदीस सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को ढालते हैं बल्कि उससे अर्ली स्टेजेस ही जब हम कोशिश कर रहे होते हैं तो लोग अदब और एहतराम करना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में हमारे अंदर इनडायरेक्टली एक तकब्बुर की सी कैफियत पैदा हो जाती है जो बजाते खुद बहुत बड़ा खतरा है। ये जो आपके मुर्शिद आपसे ये कहते होंगे कि आप के जाहिर से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप कोई नेक अमल भी करते हैं, उसके पीछे हिकमत सिर्फ एक है कि लोगों को अगर ये पता चल जाएगा कि आपके कोई नेक आदमी है या मैं कोई नेक आदमी हूं तो वो जो इज्जत और एहतराम देंगे उससे मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। फिर खुद हमारे अंदर एक तफाखिर का एलिमेंट सर उठाता है जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं। नतीजा ये है कि हमारे अंदर सख्ती आ जाती है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां सख्ती का तो गुजर ही कोई नहीं था। تو مرشد ہمیں بیٹھنے سے وہاں بچا لیتی ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہاں تم غلط جا رہے ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ مرشد ہیں, استاد ہیں, ان کے لب و لہجے میں سختی بھی آ جائے گی. بعض اوقات اگر دیکھیں گے کہ وہ مجھ جیسا کوئی موٹی کھال کا آدمی ہے, اس پہ بات کا نرم بات کا اثر نہیں ہوتا, تو وہ جیسے ہاتھی کو آپ لاکھ ایڑ لگاتے رہیے گھوڑے کے ایسے انداز میں, تو گھوڑے کو تو ایڑ لگائیں گے اور وہ ہوا ہو جائے گا, لیکن ہاتھی پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ہاتھی کے مہاوت نے لوہے کا ایک پیس رکھا ہوتا ہے, اس کو آنکس کہتے ہیں. تو جب تک وہ آنکس ہاتھی کے سر میں نہیں مارتا, ہاتھی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے مہاوت میرا. تو اگر میری طرح کا کوئی موٹی کھال والا شاگرد ہے, تو جب تک کہ وہ سخت بات کے ذریعے مجھے آنکس نہیں چبوئیں گے, مجھے پتہ نہیں چلے گا. تو مرشد بعض کا ٹھیک ٹھاک عزت افزائی بھی کر دیتے ہیں. تو میں تو اس عمل میں سے کہا تھا, کثرت سے گزرتا تھا کہ لوگوں کی موجودگی میں جو عزت افزائی ہوتی تھی وہ خاصی اونچے درجے کی تھی. لیکن اگر ایک بڑی چیز پر نظر جمائی ہوئی ہے انسان نے, تو یہ سب دیکھ لینا چاہیے. مرشد روکتے ہیں, پھر ہاتھ پکڑ کے غلط طرف جانے سے روک لیتے ہیں. سزا صابریہ میں جو آپ نے منفرد چیز مجھ سے پوچھی, تو سزا صابریہ میں ایک چیز ضرور دکھائی دیتی ہے کہ عام طور پر جوان لوگ ہوتے ہیں, میں نوجوان نہیں کہہ رہا, ویسے تو نوجوان بھی ملیں گے, لیکن جنرلی جوان آدمی ہوتے ہیں اس میں جو اس راہ پر جاتے ہیں اور کافی مقام پاتے ہیں. دوسرا, ان لوگوں میں تیزی بڑی ہوتی ہے. سلسلہ صابریہ کے تربیت یافتہ کوئی بھی آدمی دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ تیز چلیں گے ہمیشہ, کام کرنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے ان کی, مینٹلی بڑے شارپ ہوتے ہیں کہ چیز کو پک کر لیتے ہیں بڑی جلدی, ان کی گراسپ چیزوں پر, مینٹل گراسپ بہت ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمری ہی سے اس طرف چلے جاتے ہیں, تو ان میں یہ تیزی ترازی بڑی ہوتی ہے. تو باقی بنیادی طور پر تو سبھی ایک ہیں, سب کچھ ہے. یہ میری ذات کے بارے میں سوال آ گیا کہ سید یعقوب علی شاہ صاحب سلسلہ چشتیہ صابریہ وارثیہ سے منسلک تھے, انہوں نے ابتدائی طور پر آپ کو کس سلسلے میں بیعت کیا تھا, کیا چشتیہ میں یا صابریہ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سلسلے ہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے, سلسلہ ایک ہی ہے جس میں نے ابھی عرض کیا. شاگردوں نے ازراہ عقیدت اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا. ابھی بہت سے لوگ یہاں میرے علم میں آئے, وہ اپنے نام کے ساتھ سرفراز لکھ دیتے ہیں. مہدی حسن صاحب بہت بڑے گلوکار تھے, بلکہ اپنے وقت کے شاید سب سے اعلیٰ گلوکار. ان کے بہت سے شاگرد ایسے ہیں जो अपने नाम के साथ मेहदी का लफ्ज लगाते हैं, जैसे परवेज मेहदी, उनके बेटे नहीं है वो, लेकिन वो मेहदी लगा देते हैं नाम। तो अज़राए अकीदत लोग अपने नाम के साथ मुर्शद का नाम जोड़ लेते हैं। तो वो लोग जो जनाब हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उनसे फैज याफ्ता थे। तो आपका चूंकि नाम अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह साहब है, तो वो कादर से कादरी उन्होंने साथ लगा दिया। सिलसिला चिश्तिया इंडिया के अंदर, जो सिलसिला चिश्तिया के सरखेल हैं, जो सबसे आला तरीन मुर्शद हैं सिलसिला चिश्तिया में, वो जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब हैं। ख्वाजा गरीब नवाज साहब के खलीफा थे जनाब हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खलीफा थे जनाब बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, और बाबा फरीद साहब के आगे और खलीफा थे जिनमें जनाब सरकार सैयद इलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब आप भी थे। तो लोग अपने नाम के साथ चिश्तियां लगाते थे। तो जिनकी तरबियत हुई, जिनको फैज हासिल हुआ जनाब सरकार सैयद इलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब, उन्होंने अपने नाम के साथ साबरिया लगा दिया। लेकिन सिलसिला असल में वो चिश्तिया ही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया से जिन्होंने फैज पाया, उन्होंने निजामी लगा दिया नाम के साथ। सिलसिला बहरहाल चिश्तिया है। तो मुझे शर्फ हासिल हुआ सिलसिला चिश्तिया में बैत होने का। लेकिन चूंकि जनाब सरकार सैयद इलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब से फैज पाया था मेरे मुर्शद ने, और उसी में से मुझे सिखाया, तो वो सिलसिला साबरिया उसके साथ वो आ जाता है। लेकिन दरहकीकत वो सिलसिला चिश्तिया है। एक बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है वो अर्ज कर दूं मैं। कहा यह जाता है कि जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक ही खलीफा थे जनाब हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। यस, उनकी जिंदगी में एक ही खलीफा थे, लेकिन कई सदियों के बाद फिर खिलाफत हुई, ख्वाजा साहब के हाथों खिलाफत नसीब हो गई जनाब हजरत पीर मेहर अली शाह साहब को। तो जनाब हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा अव्वल हैं ख्वाजा गरीब नवाज साहब के, और पीर मेहर अली शाह साहब खलीफाए दोयम हैं। ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। इनका एक अगला सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि सिलसिला साबरिया में जलाल और तेजी होती है? यकीनी तौर पे ऐसा ही है। अब इससे एक और सवाल निकल आएगा कि अगर सिलसिला साबरिया के लोगों में तेजी और जलाल होता तो फिर जनाब सरफराज शाह साहब आप इतने सुस्तुल वजूद और धीमे क्यों हैं? वो एक जमाना था कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं किसी पढ़े लिखे और अच्छे इंसान की बजाय एक ऐसा इंसान नजर आने लगा जो अखलाकियात से वाकिफ ही नहीं है कि सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। तो यही चौक यतीम खाना में मैं गालबन कहीं बाहर से आया था टूर से वापस, तो एक बस वाले को मारा, उसको बचाने के लिए पुलिस वाला आया तो उस गरीब को भी मार पड़ गई। लेकिन अजीब बात यह है कि ये हैरतअंगेज चीज थी कि कोई आदमी सामने से हाथ नहीं उठाता था, चुपचाप खड़े मार खा जाते थे। तो वहां से तो मैं आ गया गाड़ी में बैठ के, लेकिन घर पहुंच के ये हुआ कि ये तुमने आज दुनिया का बदतरीन जुर्म किया कि एक आदमी जो यूनिफॉर्म में था उसको मारा है। तो वो पछतावा इस कदर शदीद था कि मैं फिर घर से वापस इधर आ गया चौक यतीम खाना पर और तलाश करता रहा, तो ना वो बस वाला मिला ना वो पुलिस वाला मिला मुझे, कि मैं उनसे माफी भी मांगना चाहता था और उन्हें कंपनसेट भी करना चाहता था कि मैंने ज्यादती बहुत की। तो मैंने उसके बाद फिर मुर्शिद साहब से अर्ज की कि हजूर ये तो मामला खासा खराब हो गया कि ये वर्दी वाले पर हाथ उठाना ये तो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। तो अब इस गुस्से को किसी तरह दुआ फरमाइए खत्म हो जाए। तो फरमाया कि वो या इससे ऐसा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद वो वक्त भी आया कि एक दिन मेरे मुर्शिद साहब ने मुझसे कहा, वो चूंकि उर्दू स्पीकिंग थे अंबाला के रहने वाले बुनियादी तौर पर, तो गुफ्तगू ऐसी करते थे, कहेंगे मियां बात सुनो, सांप बेशक डसे नहीं लेकिन अपनी फुनकार न छोड़े वरना लोग मार देते हैं, तो तुम अपनी फुनकार ना छोड़ो। लेकिन वो सब चीजें खत्म हो गई थी। तो हूं मैं सिलसिला साबरिया से, तो ये मेरे सुस्तुल वजूद होने से और मेरे इतना धीमा होने से ये मत समझिए कि सिलसिला साबरिया से नहीं हूं मैं, उसमें जलाल बहुत है। ये अगला सवाल कुछ ऐसा है जो कोई नेक आदमी ही जवाब दे पाएगा। पूछा है कि कभी ऐसी कैफियत कि या रब्बी कहा हो तो एकदम लगा जैसे अल्लाह ने मुस्कुराकर रहमत भरी नजर से देखा है, तो कभी कोशिश के बावजूद इंसान अल्लाह से जुड़ नहीं पाता, कनेक्शन महसूस नहीं होता, ऐसा क्यों है? असल में ये सवाल खालिस्तन रूहानी कैफियत से मुताल्लिक है। इंसान है, इसकी जहनी कैफियत मुख्तलिफ होती रहती है, कभी यकसा नहीं रहती। तो ऐसा वक्त भी आता है कि बंदा रूहानी तौर पर बहुत रिसेप्टिव होता है, तो कभी इत्तफाक से वो कैफियत है और उसने रब को पुकारा तो उसको एक एहसास हुआ कि मेरे रब ने जवाब दिया है, एहसास हुआ। मैं अर्ज कर रहा हूं हम लोग दुनिया में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, रोजगार के मामलात हैं, जहां ऊंच नीच होती रहती है, ये तमाम अवामिल मिलकर बच्चे हैं उनकी परेशानी है, उनकी उनसे खुशियां हासिल होती हैं, परेशानियां भी आती हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनके मामलात, उनके हालात, उनके रवैयों से इंसान की ज़हनी कैफियत बदलती रहती है। तो हम पर ये कैफियत हमेशा ताजी नहीं रहती, तो ये कभी कभार जब हम रूहानी तौर पर बहुत रिसेप्टिव होते हैं तो वहां एहसास हो जाता है कि मैंने रब को पुकारा और मेरे रब ने जवाब दिया है। बहुत कम होता है, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब रब पर हमारा भरोसा 100% हो जाएगा तो एक रवैया जिंदगी में दर आता है कि बड़ी से बड़ी बात जब हो जाए तो आदमी ये सोचता है कि मेरे रब ने यूं ही चाहा, मेरे लिए यही बेहतर समझा, उसने कर दिया, तो मेरे रब ने चूंकि किया है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त चीज को भी इंसान हंस के बर्दाश्त कर जाता है, या कम से कम ज़हनी तौर पर टाल जाता है। एक तो ये है, दूसरी कैफियत ये पैदा हो जाती है इंसान में कि मेरा रब मौजूद है, मेरे रब के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, बड़ा नुकसान हो गया तो इंसान के दिल में आता है कि ठीक है, मेरे रब ने अता किया था, चला गया, अल्लाह और दे देगा, तो उसके दिल में वो दुनियावी चीजों का, दुनियावी हालात का, दुनियावी मामलात का दिल पर असर इतना नहीं होता कि उसे रब से गाफिल कर दे। तो जब इंसान उस तरफ चला जाता तो ये कैफियत कसरत इख्तियार कर लेती है, लेकिन वो एक ही सूरत में आएगी कि जब हम दुनियावी मामलात में, अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात में रब पर इस दर्जे का भरोसा करने लगे कि हमें सिर्फ रब ही याद रह जाए और कोई चीज हमें मुतासर न करने पाए, तो आदमी उस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर ये कैफियत कसरत से होती है। इंशाल्लाह ताला बाकी इस मौजू पे नेक्स्ट टाइम गुफ्तगू होती है, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।